الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله منشن کے ناظرین پروگرام حکم خدا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، جو شخص جمعہ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے اس آدمی کی پوری فرما دیتا ہے. اللہ کریم کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مدشن کے ناظرین، پروگرام حکم خدا با زبان مصطفیٰ میں قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جن میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور قل کہہ کر اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ ارشاد فرمائیں، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو ارشاد فرمائیں، تو وہ آیات جن میں قل کے کلمات سے قل سے اپنے محبوب کو حکم دیا گیا ہے، وہ آیات مبارکہ کا ہم درس پروگرام اس میں سماعت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آج بھی وہ آیت مبارکہ جو قل سے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا ہے وہ سماعت کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرماؤ. کیا فرماؤ؟ کہا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ان سے ارشاد فرماؤ کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. یہ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، رب کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جائی ہوئی ہے. رب کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنے گناہ ہی گناہ ہوں کہ وہ گناہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، وہ گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، وہ گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، وہ گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، لیکن یاد رکھیے وہ گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں مگر وہ رب کی رحمت سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی رحمت وہ بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے. انسان ایک بار سچے دل سے رب سے کہہ دے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، وہ کریم، اس کی شان کریمی اس قدر ہے کہ یہ ایک بار کہتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ سارے گناہ بخش دیتا ہے اور وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور گناہوں کو معاف فرمانے والا بھی ہے. یعنی جب تک بندے کے لیے توبہ کا دروازہ وہ کھلا ہے تو इसकी तौबा कबूल ही कबूल है, ये तौबा करें। और तौबा का दरवाजा कब बंद होता है? ये कहा गया कि जब वो मौत के गरगरा में ना पहुंच जाए, जब है या मौत की कैफियत उस पर तारी हो गई, तो ये वो वक्त है कि जिस वक्त उस पर बंद हो जाता है। लेकिन ये इंसान के पास कितनी मोहलत अल्लाह देता है, ये रब की रहमत ही है कि वो उस गुनाह पर पकड़ यूं नहीं फरमाता कि गुनाह की वजह से वो पूरे के पूरे तबाह बर्बाद लोग हो जाएं, ये नहीं कर रहा। नहीं, अपने फरमा बरदारों को भी खिलाता है, देता है, नाफरमानों को भी देता है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद वो कभी रखनी चाहिए, कभी अल्लाह की रहमत से उम्मीद, कभी भी मायूस नहीं होना, क्योंकि रब की रहमत से ना उम्मीदी और मायूसी, इसको कुरान में जगह बजगह बयान फरमाया, कहीं इसकी मुजम्मत की गई, हराम है, यानी कि रब से ना उम्मीद हो जाना, मायूस हो जाना, इसकी शरीयत मुताहरा में इजाजत नहीं। रब की रहमत की हर वक्त उम्मीद लगाए रखना, लेकिन साथ साथ खौफ की कैफियत भी हो, उम्मीद भी है और खौफ भी है। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो अल्लाह बहुत नवाजने वाला है, वो उनको वो कादर मुतलक है सारे गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला। हदीस में इरशाद फरमाया गया, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, फरमाया, ए इंसान, जब तक तू मुझसे दुआ करता और उम्मीद रखता रहेगा, अल्लाह फरमाता है, उस वक्त तक मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, माफ फरमा दूंगा। जब तक आदमी वो उम्मीद रखता रहेगा, रब बख्शता रहेगा, फरमाया मैं बख्शता रहूंगा। और फिर शायद फरमाया, चाहे तुझ में कितने गुनाह हो, मुझे कोई परवाह नहीं, और ऐ इंसान, अगर तेरे गुनाह आसमानों तक पहुंच जाएं, अगर तेरे गुनाह आसमानों तक पहुंच जाएं, फिर भी तू बख्शिश मांगे, मैं बख्श दूंगा, फिर भी मांगे तो मैं बख्श दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। और ऐ इंसान, अगर तू जमीन भर गुनाह भी मेरे पास लाए, लेकिन शिर्क ना किया हो तो मैं तुम्हें उसके बराबर भी बख्श दूंगा। पूरी जमीन गुनाहों से इंसान भर दे, कर लिए, नाफरमानियां हो गई, लेकिन शिर्क का गुनाह नहीं, क्योंकि शिर्क रब माफ नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। कुफर, शिर्क, इसकी कोई माफी नहीं है। दुनिया के अंदर अगर आदमी सच्ची तौबा इस शिर्क से भी करे, कुछ कुफरियात से करे, वो हालत कुफर से निकलकर हालत ईमान में आ सकता है, ये दारुल अमल है, उसको मौका है। इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह नहीं बख्शेगा किसके लिए, फरमाया उसको नहीं मगफरत फरमाएगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, उसके साथ शरीक ठहराया जाए। व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जिसके लिए चाहे, जिसके लिए चाहे वो मगफरत फरमा देगा। यानी कबीरा से कबीरा गुनाह हो, बड़े बड़े गुनाह हो, रब चाहे तो वो माफ फरमा देता है, ये उसकी रहमत है, ये उसकी रहमत है, वो चाहे तो माफ फरमा देता है। लेकिन शिर्क वो माफ नहीं फरमाएगा, ये उसका फैसला है, और ये फैसला अटल फैसला है कि जो आदमी शिर्क के साथ दुनिया से जाता है, कुफर और शिर्क का मामला हो, तो ऐसा नहीं हम कहें कि वो भी रहमत में बख्शा जाएगा, नहीं, ये उसका फैसला है कि शिर्क के साथ अल्लाह से मुलाकात करेगा, यानी दुनिया से जाएगा, फिर कुछ नहीं उसको मिलेगा। और शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात और सिफात में किसी दूसरे को ऐसा मानना, ये शिर्क कहलाता है, किसी दूसरे को ऐसा मानना। और याद रखें, बाज़ औक़ात आम लोगों की किसी बात पर भी लोग मुख्तलिफ उन्हें शिर्क शिर्क बोल देते हैं, तो इन चीजों को भी समझना चाहिए। शिर्क ऐसे नहीं किसी को कह सकते, आम मुसलमानों के बारे में ये कह देना, नहीं, शिर्क के हवाले से बाकायदा वाज़े उसकी ये तारीफ है, ये वजाहत है। कोई भी मुसलमान सहीहुल अकीदा किसी नबी को या किसी वली को, किसी सहाबी को, किसी बड़े से बड़े मर्तबे वाले को भी, वो ऐसा माज अल्लाह कतन अकीदा नहीं रख सकता कि ये अल्लाह की तरह जात और सिफात में, हरगिज नहीं। वो ये अकीदा रखता है ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की तरह मोहताज है, रब किसी का मोहताज नहीं। तो शिर्क नहीं माफ करेगा, लेकिन शिर्क के अलावा जो होंगे अल्लाह चाहेगा अपनी रहमत से माफ फरमा देगा। और यह आयत मुबारका जिसमें रब अज़्ज़ा वजल ने कुल कहकर यह इरशाद फरमाया, ये उन लोगों को कि बाज़ुकात इंसान को शैतान ख्याल डालता है कि यार तू तौबा कर रहा है, इतने गुनाह तेरे, इतने ज्यादा गुनाह ही गुनाह है, तेरी तौबा कैसे कबूल होगी, कैसे तेरी तौबा कबूल हो सकती। तो ऐसे मौके पर जब ये शैतान दिल में डालता है ना, तो इस आयत को पढ़ के वो वसवसा दूर करना चाहिए कि ये शैतान मलून है जो मुझे तौबा से रोक रहा है। जबकि रब तो ये इरशाद फरमाता है, आए मेरे पास, आसमान को भर दे, जमीन पूरी भर के लेकर आ जाए, आए तो सही कोई सच्चे दिल से रब की तरफ आए, तब उसको माफ फरमा देगा, उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। तो कुल या इबादी अल्लज़ीना सरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। के महबूब फरमाओ, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स अपनी जानों पर जुल्म ज़ियाती कर ली यानी गुनाह कर लिए हैं, तो मेरी रहमत से मायूस ना हो, बेशक वो सारे गुनाह माफ करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान है, रहम करने वाला वो बख्शने वाला है। और दूसरी आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहा। इरशाद फरमाया, और बेशक मैं उस आदमी को बहुत बख्शने वाला हूं, किसको, जिसने तौबा की और ईमान लाया, नेक अमल किया फिर हिदायत पर रहा, नेक अमल करता रहा। और कुरान पाक में यहां तक उसके लिए बशारत भी अता फरमा दी, अल्लाह ऐसों के गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देता है। किनको, जिनको सच्ची रब से उम्मीदें लग जाएं और सच्चे दिल से रब की रहमत को पुकारें और तौबा की शरायत को पूरा करते हुए, अल्लाह आज के बाद मैं उस बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, इरादा हो, अज्म हो, जो कुछ जिम्मे तलाफी है उसको खत्म करे, उसको अदा करे, तो ये रब अज़्ज़ा वजल बख्शने वाला है, मेहरबान है, करीम है, रहीम है। लेकिन गुनाह पर इसरार भी करता रहे, गुनाह पर अड़ा रहे और खड़ा रहे और कहे मेरी बख्शिश भी हो जाएगी, ऐसे लोग गलती के अंदर होते हैं, याद रखें उनकी वो तौबा तौबा नहीं होती। हम जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए जिसकी तौबा उन शरायत के मुताबिक हो और वो सच्चे दिल से रब के आगे झुक जाए और माफी मांग ले, माफी मांग ले। तो ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब गुनाह पर कायम भी है और कहता है मैं तौबा करता हूं, इसको हदीस में फरमाया ठट्ठा कर रहा है, मजाक कर रहा है अपने रब से कि गुनाह भी कर रहा है और साथ कहता है मैं तौबा भी कर रहा हूं, तो ये मजाक है। गुनाह हो गया अब तौबा करें, जब तौबा कर रहे हैं तो सच्चे दिल से तौबा करें कि अब वो नहीं करना। अगर नफ्स की शरारतों में आकर फिर कर लिया, फिर हो गया, कोई बात नहीं, फिर तौबा करें, 100 दफा क्या, 1000 दफा करें। फरमाया ना बार बार करने वाला हो, लेकिन जब करना होता हो तौबा तो नदामत के साथ रब से माफी मांगे कि मैं आज के बाद वो नहीं करूंगा। और याद रखे मदचैन के नाजरीन, मायूसी ना उम्मीदी ये वाली जो कैफियत है ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन खौफ वो भी दिल में रहे, बेबाक ना हो जाए, ना डर ना हो जाए, उम्मीद खौफ दोनों की कैफियत ये होनी चाहिए, यही एक एतदाल वाली सूरत और हमारे असलाफ का अंदाज तरीका रहा। हजरत उमर रदी अल्लाह अनु कहते रब की रहमत से इतनी उम्मीद है, अगर ऐलान जन्नत में एक ही जाएगा तो कहा मैं ही होऊंगा जो जन्नत में जाऊंगा, और अगर ये ऐलान हो सारे जन्नत में जाएंगे एक दोजक में जाएंगे तो कहा मुझे डर लगता है कहीं वो मैं ना हूं जो दोजक में जाऊंगा। उम्मीद भी है और खौफ भी है। रहमत पर बाज औकात शैतान वसवसे दिला दिलाकर इंसान को बहुत ज्यादा रहमत के अंदर इस तरह वो गोया के गोते देने की कोशिश करता है, हकीकतन रहमत में गोते देने की कोशिश नहीं करता बल्कि वो उन लोगों को अपना पैरोकार बना रहा होता है और वो उनको सिखाता है क्या अल्लाह की बड़ी रहमत करते जाओ, ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी। रहमत की उम्मीद पर गुनाह करना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। बस ठीक है बख्शे जाएंगे लेकिन कर लो अभी नहीं, सच्चे दिल से तौबा तायब होना है और उम्मीद रहमत की रखनी है, खौफ भी साथ साथ हो। अब जरा ये सोचिए अगर किसी का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, बिला तशबीह में अर्ज करो डॉक्टर जानने वाला हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल उसका वो मालिक हो, किसी को कहता है बेफिक्र हो जाओ भाई तुम्हारा इलाज मेरे जिम्मे, इलाज मुआलजे में टेंशन नहीं लेना मैं हूं। अच्छा भी ठीक है हो, अब जिसको इसने कह दिया कि कोई टेंशन नहीं लेनी मैं आपका सारा मामला ये कर दूंगा, इलाज तुम्हारा मैं करूंगा, ये सब कुछ मैं करूंगा, अब वो आदमी ये सोचे भाई मेरा इलाज फ्री, डॉक्टर मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, तो अब अपनी बाइक पे बैठा हो क्या दीवार में लगा देगा कि कुछ नहीं होता, सर फूट गया टांग टूट गई तो मेरा तो डॉक्टर जाने वाला है, उसने तो मुझे पहले ही कहा आपको फ्री है मेडिकल पूरा, नहीं करेगा वो ऐसा। अगर करेगा तो उसको जमाना कहेगा कि बेवकूफ इंसान है ये, अहमक तरीन इंसान। अरे उस डॉक्टर का कहने का मकसद ये था कि अगर खुदा ना खासा तेरे साथ कोई वाकया हो जाए तो हम बैठे हुए हैं, आप आ जाना हम तुम्हारे साथ ये कर लेंगे। बिला तशवीश को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिला तशवीश, रब की रहमत तो बड़ी वसी है। अरे रब की रहमत पे फिर उम्मीद, वो बख्शिश की यूं उम्मीद है कि अपना खुद सर किसी नाफरमानियों में जानबूझ के नहीं मारना, क्या हम क्या बहुत बड़ी रहमत है और हम इस तरफ शैतान के बहकावे में आते जाए, नहीं शैतान के बहकावे में यूं नहीं, अपने आप को गुनाहों से बचाना है और साथ साथ रब की रहमत पे उम्मीदें लगानी, फिर रब के रहमत के सुपुर्द हैं क्या मामला फरमाता है। और रब की रहमत इस कदर वसी है कि फरमा दिया गया कि आदमी जब एक बालिश चलता है, आदमी जब एक बालिश चलता है तो रब की रहमत एक गज इसकी तरफ आती है, ये चलना शुरू करता है रब की रहमत दौड़ना शुरू करती है, इसे अपनी रहमत में समेट लेती है, इसे समेट लेती है। तो मदशन के नाजरीन खौफ और उम्मीद ये दोनों चीजें साथ साथ हों, और रब की रहमत पे जब ऐसी उम्मीद रखता हुआ रब की इतात वाले काम इंसान करे, उम्मीद और साथ इतात ये दोनों साथ साथ काम चलेंगे, क्योंकि हम जितनी भी इबादत कर लें हकीकतन रब के हम शुक्र गुजार कमा हकू बंदे बन ही नहीं सकते, यानी वो शुक्र का हक अदा ही नहीं कर सकते चाहे जितनी भी इबादत कर। बिल आखिर हम अपने असलाफ को देखें, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो कि मासूम हैं गुनाहों से, फरिश्ते मासूम हैं, गुनाह हो ही नहीं सकता कर ही नहीं सकते, अंबिया और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत से अल्लाह के नेक बंदे महफूज होते हैं, अल्लाह उन्हें महफूज फरमा लेता है, वो सारी जिंदगी इताअत फरमा बरदारी में गुजारते हैं, लेकिन फिर भी रब से डरते हुए, फिर भी रब से डरते हुए खौफ खाते हुए। तो रब की रहमत बहुत वसी, लेकिन साथ साथ अल्लाह की इताअत वाले काम, फरमा बरदारी वाले काम। तो ये आयत मुबारक जिसमें फरमाया रहमत से ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, ये आयत मुबारक बेसिक इसका कुछ पस मंजर भी बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह अनु इनको जिस आदमी ने गज़वा उहद में शहीद किया था उसका नाम वहशी था, और ये बाद में मुसलमान हो गए और सहाबी रसूल बने। गज़वा उहद में इन्होंने उनको शहीद किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए, और इस कदर रंजीदा हुए कि सहाबा कहते हैं हमने आपको जितना गमगीन और जितना आपको रोते हुए उस वक्त देखा हमने पहले कभी ना देखा था। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को याद करते थे रंजीदा भी रहते थे, लेकिन फिर भी आपने वहशी को ईमान की दावत दी और ईमान की तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद जब वहशी ने हाजिर होकर आपसे अमान तलब की और आपसे अपने बारे में पूछा और कहा कि मेरी मगफिरत और निजात की कोई सूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया मेरी तुम पर नजर ना पड़ती और तुम मुझसे इस हालत में ना मिलते, ना अमान चाहते हुए आते तो ये मुझे पसंद था, लेकिन अब तुम आ ही गए हो और अमान मांगी है तो मैं जरूर तुम्हें अमान दूंगा, और तुमने मुझसे खुदा का कलाम सुनाने का कहा है तो मैं जरूर तुम्हें सुनाऊं। तो फिर आपने अल्लाह की आयत मुबारक जो नाजिल हुई वो पढ़ी, वल्लदीन ला यदउना मअल्लाह इलाहन आखर, वो जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पूजते, इबादत नहीं करते। जब ये आयत मुबारक, और इसमें फिर कई वो औसाफ बयान किए गए कि जो लोग शिर्क ना करें, बदकारियां ना करें, कत्ले नहक ना करें, उनके बारे में मगफिरत बशारत के हवाले से बताया गया। तो वहशी ने कहा कि मैं तो साबका जिंदगी में शिर्क में भी रहा हूं, यानी शिर्क ही है जो जिस कैफियत में हूं। अच्छा, बुराई, कत्ले नहक, हालत कुफर में ये सब कुछ हुए। तो इस आयत में तो ये बताया गया है कि जो आदमी ये काम ना करे, शिर्क ना किया हुआ हो मैंने किया, कत्ल ना किया हो ये हालत कुफर में हुए मुझसे ये मामला, बदकारी नहीं है हालत कुफर में ये भी मामला थे, तो इसमें मगफिरत तो मेरे लिए नहीं होगी। तो ये इसमें वाज़े फरमाया जा रहा है अल्लाह के कलाम में कि ये जिसने ये काम ना किया उनके लिए बख्शिश होगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने फिर एक और आयत मुबारक आगे नाजिल फरमाई, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, मगर वो जो तौबा करे और ईमान ले आए और नेक अमल करे, साले अमल करे, साले अमल करे। वहशी ने कहा इस आयत में शर्त की गई है, क्या चीज शर्त की गई है, कि गुनाहों से मगफिरत उससे हासिल होगी जो तौबा भी कर ले और उसके बाद नेक अमल भी कर ले। इसमें तो ये शर्त बयान की गई, और मुझे नेक अमल का मौका ही ना मिला तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो गोया के मेरे हवाले से मैं इससे इनको गोया के उस अंदाज से तसल्ली नहीं हो रही थी। अल्लाह ने जो आयत मुबारक नाजिल की और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन पर एक और आयत तिलावत फरमाई, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, फरमाया बेशक अल्लाह नहीं बख्शता कि उसके साथ कुफर किया जाए, शिर्क किया जाए, उसको नहीं बख्शता, और इसके अलावा जो कुछ है रब माफ फरमा देता, जो कुछ रब चाहेगा वो माफ फरमा देगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं फरमाएगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। जब ये सुनाई तो ये फिर भी वहशी पता क्या कहने लगा, कहने लगा कि इसमें मगफिरत मशीयत इलाही के साथ मशरूत है, यानी जिसके लिए अल्लाह चाहे उसे बख्श देगा। मुझे तो नहीं पता रब मेरे हवाले से रब की मशीयत क्या है, रब क्या चाहेगा, मुझे तो नहीं पता। तो जब मुझे पता ही नहीं है तो इसमें मेरे लिए मगफिरत की उस तरह बशारत ही नहीं है। अल्लाह, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत मुबारका यही उतनी जो आज का हमारा मौजू, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محبوب، یہ فرماؤ انہیں، کیا فرمائیں؟ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر ظلم کیے، زیادتیاں کی، گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، اور وہ بخشنے والا مہربان رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی، مہربان بھی۔ تو جب یہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نے سنائی نا، تو وحشی کہنے لگا کہ ہاں، اس میں بالکل بغیر کسی شرط کے ہے کہ اللہ سب کچھ بخش دیتا ہے۔ تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اب جب مسلمان ہوئے تو ایک دل میں تھا ایک معاملہ کہ میرے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کے چچا کا غزوے میں قتل ہوا تھا، تو اب کوئی ایسی نیکی بھی مجھے مل جائے کہ میرا وہ گناہ معاف ہو جائے۔ یعنی پھر بھی ایک دل میں وہ رہتی تھی کیفیت، اسلام لانے سے اسلام کے قبل سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ پھر بالآخر مسلمہ کذاب، جس نے ختم نبوت کا اس عقیدے کو ٹھیس پہنچائی، اور خود نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس نے نبی ہونے کا معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کیا، تو وحشی نے اس لوگوں کے ساتھ اس جہاد میں شرکت کی اور اس کا کلا کما کیا، اسے واصلے جہنم کیا۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ میرے نامہ اعمال میں ہے تو یہ نیکی بھی میرے نامہ اعمال میں۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاملے میں کہ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو میں نے اس پر پہرا دیا ہے اور میں نے اس آدمی کو واصلے جہنم کیا ہے۔ مدرشان کے ناظرین، یہ کتنے خوبصورت انداز میں رب عز و جل نے آیتوں میں کہیں فرماتا ہے شرک نہ ہو، اس کے علاوہ جو چاہے رب بخش دے گا۔ پھر فرماتا ہے ایمان لے کر آ جائے کوئی، توبہ کرے، ایمان لائے تو نیک عمل کرے۔ پھر آگے خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ جو چاہے گا رب بخش دے۔ پھر خود ہی فرماتا ہے رب عز و جل کہ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اپنی جانوں پر ظلم کیے اب مایوس نہ ہو، رب کے آگے جھک جاؤ۔ تو یہ رب کی شان کریم، رب کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، اور یہ رب کی رحمت بالخصوص جو صبح سحر کا وقت ہوتا ہے، حدیثوں میں اللہ آسمان دنیا پر خصوصی تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی مبتلا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں کہ اسے عافیت دی جائے؟ ہے کوئی رزق کا سوالی کہ اسے رزق دیا جائے؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے؟ کوئی ہے توبہ کرنے والا؟ تو صبح سحر کا وقت یہ بڑا عظمتوں والا وقت ہے، رب کے حضور توبہ کرے، رب کے حضور توبہ کرے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، رب نے اسے بیان کیا کہ میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، پانی رک جائے تو آسمان سے بارش اتار دے گا، مسلا دھار بارش دے گا، تمہاری بیٹوں اور تمہاری مال سے مدد فرمائے گا، بیٹے بھی دے گا مال بھی دے گا۔ یعنی سچے دل سے رب کے پاس کوئی رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، بیٹوں کی پریشانی ہے، بیٹے نہیں ہیں اولاد میں، اللہ دے گا۔ اس لیے کئی بزرگ یہ وظیفہ اپناتے، کوئی آ کے کہتا حضور مال کی تنگی ہے، کہتے ہیں استغفار کرو، کہتے ہیں حضور بیٹے نہیں ہیں، کہا استغفار کرو، کسی نے کہا بارش نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ رب اسی کی بدولت تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، سب کچھ دور فرما دے گا۔ تو رمضان المبارک کی گھڑیاں، مبارک عظمتوں والی گھڑیاں، ایک لمحہ بھی ہمارا معاذ اللہ اللہ کی نافرمانی اور فضولیات میں صرف نہیں ہونا چاہیے. اس وقت کو غنیمت جانیے، اس وقت کو غنیمت جانیے اور رب عز و جل کی عبادت کرتے رہیں، رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور راضی کرنے کے جو کام ہیں، جو کام ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہوں، وہ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں. معذرت سے مدنی چینل کے ناظرین، اگر کام دوزخ کی طرف لے جانے والے ہوں اور پھر بھی امیدیں لگائے رکھیں کہ جائیں گے ہم جنت کی طرف، تو شاید یہ بہت بڑی اکثریت کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے. مسلسل دوزخی والے کام کرنا، مسلسل اپنے آپ کو دوزخ میں لے جانے والے کام کرنا اور کہنا ہم جنتی ہیں، بس امیدیں لگا کے بیٹھے، بخشے گئے. امید ضرور لگائیں لیکن خوف دل سے نہ نکالیں، بے باک نہ ہو جائیں، نہ ڈر نہ ہو جائیں. رمضان کی راتیں ہیں یا رمضان کے دن ہیں، رب دیکھنے والا ہے. روزے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا لیکن رمضان کی راتوں میں گناہوں کی لپیٹ میں آ جانا، کئی تو روزے میں ایسی سی فضولیات میں پڑ جاتے، تو خدا را ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیے. منشن کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو صدق کے دل سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رحمت الہی سے ہم مایوس بھی نہ ہوں، نہ امید بھی نہ ہوں، امید بھی لگائے رکھیں، رب اپنا خوف بھی ہمیں عطا فرمائے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.